नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।
दुनिया अब भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस के साथ 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सरगेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सच्ची खुशी करुणा, आत्मसम्मान और संतोष से मिलती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत का सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रेजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमरीकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। इस अवधि के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। नीलसन आईक्यू और वर्ल्ड डेटा लैब ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत में 2036 तक 10 करोड़ 80 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में यह संख्या 10 करोड़ 30 लाख है। रिपोर्ट में प्रतिदिन $90 से अधिक खर्च करने वाले लोगों को धनी उपभोक्ताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। 2026 में भारत में लगभग 2 करोड़ 60 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान है। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 शतरंज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम कर लिया है। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट के 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।